नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कृषि और ग्रामीण बदलाव पर बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित करेंगे। इस विषय के अंतर्गत 8 वेबिनार सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें 4 प्रमुख सेक्टर कृषि, पशुपालन और डेयरी, मत्स्य पालन और ग्रामीण आजीविका पर विचार विमर्श होगा। बजट पश्चात वेबिनार में उच्च मूल्य के कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके लिए काजू, नारियल, चंदन, अगरवुड, बादाम, अखरोट और चिलगोजे की आर्थिक रूप से अधिक लाभकारी खेती पर विचार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति पर अपनी साझा चिंताओं और संवाद तथा कूटनीतिक समाधान की आवश्यकता पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों देश क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए घनिष्ठ सहयोग और समन्वय जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में रायसेना डायलॉग के 11वें संस्करण का शुभारंभ किया। अपने मुख्य भाषण के दौरान फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्सेंडर स्टूब ने कहा कि विकासशील और अल्पविकसित देश ये तय करेंगे कि भविष्य में विश्व व्यवस्था कैसी होगी और इसमें भारत की अहम भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सीट मिलनी चाहिए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि आगामी कुछ दिनों में होने वाली चर्चाएं नई क्षमताओं, प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई सोच पर केंद्रित होगी।
Our discussions over the next few days.
अगले कुछ दिन में हमारी चर्चा नई क्षमताओं, सैन्य, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, मानव संसाधन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा प्रौद्योगिकी के बारे में होगी। ये चर्चा दो नए विचारों, जोखिम लेने की बढ़ती प्रवृत्ति और साथ ही जोखिम कम करने तथा विविधीकरण के बढ़ते संकल्प के बारे में भी होगी।
The growing resolve to de-risk and diversify.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्सेंडर स्टूब ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और संयुक्त राष्ट्र केंद्रित बहुपक्षीय सहयोग की प्रतिबद्धता दोहराई है। फिनलैंड के राष्ट्रपति की भारत यात्रा संपन्न होने पर भारत फिनलैंड संयुक्त वक्तव्य में बताया गया कि दोनों देशों के नेताओं ने आपसी सम्मान, लोकतंत्र और विधि सम्मत शासन मूल्यों पर आधारित वैश्विक शांति, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में राज्यपाल और उपराज्यपाल नियुक्त किए। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा को महाराष्ट्र का, तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि को पश्चिम बंगाल का और केरल का राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को दिल लद्दाख का राज्यपाल और पूर्व राजनयिक तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को नागालैंड का और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद हत्ता हसनैन को बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के अगले सर्वोच्च नेता के चयन में उन्हें व्यक्तिगत रूप से शामिल किया जाना चाहिए। श्री ट्रंप ने एक साक्षात्कार में कहा कि खामनेई के पुत्र कमजोर उम्मीदवार हैं और अपनी दावेदारी पर समय बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे ऐसे नेता चाहते हैं जो ईरान में सद्भाव और शांति लाए। ईरान ने अयातुल्लाह अली खामनेई के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी बनने के प्रमुख उम्मीदवारों में खामनेई का बेटा मुज्तबा शामिल है। भारत ने नेपाल में आम चुनाव सफलतापूर्वक संचालित होने और नागरिकों द्वारा उत्साहपूर्वक लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रयोग का स्वागत किया है। भारत T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से हराया। भारत ने इंग्लैंड को 254 रन का लक्ष्य दिया था, जवाब में इंग्लैंड की टीम 246 रन ही बना सकी। संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। गृहमंत्री अमित शाह ने भारतीय टीम को फाइनल में पहुंचने पर बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि टीम की दृढ़ता और कड़ी मेहनत सराहनीय रही। उन्होंने फाइनल मुकाबले के लिए भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।